दिन भर शुक्रवार 23 अक्टूबर मैं हूं निखिल रंजन। दिल्ली की सड़कों पर निकला साहित्यकारों का जुलूस।
कुछ ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने पुरस्कार लौटा दिए हैं वही सरकार के या उनके विरोधी हैं और इसके अलावा बाकी लोग जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है।
फिल्मों के लिए गाने लिखे लेकिन शायरी से समझौता नहीं किया। करेंगे याद साहिर लुधियानवी को।
उस वक्त मैंने उनसे तय किया था कि 1000 किताब छापेंगे, 6% रॉयल्टी देंगे। क्या रॉयल्टी 62.50 रुपए बनते थे। मैंने खत लिखा, मैं ये आपको अखीर से रकम भिजवा रहा हूँ। तो उनका मुझे जवाब आया, ये आप इसको मामूली रकम मानते हैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे रॉयल्टी दी कि मैं तो इस चेक को कभी भूल नहीं पाऊंगा।
खबरें होंगी और भी लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। लेखकों के साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने के सिलसिले के बाद साहित्य अकादमी ने आज एक विशेष बैठक बुलाकर डॉक्टर एमएम कलबुर्गी की हत्या पर अफसोस जाहिर किया और डॉक्टर कलबुर्गी और अन्य बुद्धिजीवियों की हत्याओं पर कड़ी निंदा की है। भारत में बढ़ती कथित असहिष्णुता के खिलाफ पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों से साहित्य अकादमी ने अवार्ड वापस लेने की अपील की है। अकादमी ने इस्तीफा देने वाले लेखकों से इस्तीफा वापस लेने की भी अपील की। इससे पहले दिल्ली में लेखकों ने एक मौन जुलूस निकाला। स्वीडन की पुलिस का मानना है कि एक स्कूल में एक शिक्षक और छात्र की हत्या करने वाले शख्स ने यह हमला जातिवाद से प्रेरित होकर किया था। पुलिस अध्यक्ष निकोलस होलग्रेन ने कहा कि यह धारणा हमलावर के अपार्टमेंट से मिली चीजों और हमले के दौरान उसके बर्ताव के आधार पर बन पाई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 वर्षीय हमलावर कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने रंग के आधार पर लोगों पर हमला किया। स्वीडन की संसद में लिबरल पार्टी के 29 वर्षीय सांसद सैद अब्दू एरिट्रियन मूल के हैं और उन्होंने बताया।
People live in different communities. We're actually in the bottom if you see in the ranking of how segregated our city.
लोग अलग थलग समुदायों में रहते हैं। अलग थलग रहने के मामले में हमारे शहरों की रैंकिंग काफी नीचे है। खासकर कल जहां हमला हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ट्रेंट हैटन में क्रैनन स्कूल का ये इलाका काफी अलग थलग रहते हैं यहाँ पर लोग। हमने कोशिश की है कि स्थिति को बदलने की, लेकिन स्कूल भी नया है और हमने अलग अलग रहने की समस्या के समाधान की कोशिश की, लेकिन जाहिर है हम सही समाधान नहीं निकाल पाए हैं। ये थे सैद अब्दू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिंकन शेफी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार की दौड़ से बाहर होने का ऐलान किया है। रोड आइलैंड के पूर्व राज्यपाल हाल के राष्ट्रीय सर्वे में काफी पीछे चल रहे थे। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की दौड़ में हिलरी क्लिंटन अन्य दो दावेदारों के साथ बच गई हैं। सीरिया में युद्ध खत्म करने के लिए वियना में उच्च स्तरीय बैठक जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी रूस और तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेय लवरोव ने सीरिया में युद्ध खत्म करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया तेजी से शुरू करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सीरिया की सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत शुरू की जानी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि विपक्ष का कौन सा गुट है जिससे बातचीत की जानी चाहिए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। आज शुक्रवार है और आपको इंतजार है रेहान फजल की विवेचना का, जो हम सुनवाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं वो दास्तान जो आज दिल्ली की सड़कों पर दिखा। दिल्ली में साहित्यकारों का एक दल मुंह पर काले कपड़े बांधकर मौन प्रदर्शन करने निकला। बीते कई दिनों से लेखक साहित्यकार देश में मौजूदा परिस्थितियों का विरोध जताने के लिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार वापस लौटा रहे हैं। अब तक 40 साहित्यकारों ने ये सम्मान लौटाए हैं। दूसरी तरफ सड़कों पर एक और दल भी था जो इस विरोध का विरोध कर रहा था। ये वो लोग हैं जो लेखकों के विरोध को गलत मान रहे हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी है और क्या कुछ हुआ है ये बताने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वात्सल्य, स्वागत है आपका। ये बताइए कि क्या किस तरह का रहा वो जो मौन प्रदर्शन हुआ लेखकों का, आज तो वो सड़कों पर भी उतर आए, क्या कुछ हुआ इस दौरान?
जी निखिल, जैसा आपने बताया, ये अपने आप में एक अनूठा प्रदर्शन था। एक तरफ लेखकों का वो समूह था, साहित्यकारों का वो समूह था, जो लगातार असहिष्णुता के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, दादरी जैसे मामले सामने आए हैं, या एक साहित्यकार, कन्नड़ साहित्यकार प्रोफेसर MM कलबुर्गी की जो हत्या हुई थी, उन मामलों का विरोध कर रहे हैं और पुरस्कार भी लौटा रहे हैं। एक तरफ वो लोग थे, दूसरी तरफ जो इन विरोध प्रदर्शनों का विरोध करने वाले लोग थे। पहला जो दड़ा था, जो पुरस्कार लौटाकर और सरकार की चुप्पी को सवाल उठा रहा है, वो लोग अपना एक मौन जुलूस उन्होंने निकाला और उनका कहना था कि पुरस्कार लौटाना इसकी पहली कड़ी थी, मौन जुलूस दूसरी कड़ी है, और अब भी अगर इस मामले को लेकर चुप्पी नहीं टूटी, अगर हिंसा नहीं रुकी, अगर लेखकों और साहित्यकारों पर हमले नहीं रुके, तो आगे और कड़े कठोर कदम अपने विरोध को लेते हुए वो उठाएंगे। उन्होंने जो अपना एक मौन जुलूस निकाला, जिसमें सभी साहित्यकार, लेखक 100 के करीब लोग शामिल थे, जिन्होंने अपने मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी, जिससे वो बताना चाह रहे थे कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें संविधान से मिली हुई है, उसे रोक दिया गया है। वो काली पट्टी मुंह पर बांधकर वो लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका जो विरोध प्रदर्शन का जो जुलूस था, वो श्रीराम सेंटर से शुरू हुआ और वो लोग चलते हुए साहित्य अकादमी के भवन तक गए। उन्होंने पोस्टर्स भी पकड़े हुए थे, जिसमें प्रोफेसर कलबुर्गी को सल्यूट और दूसरी बातें इस तरह की वो अपनी मांगें उठा रहे थे।
वत्सल्य, साहित्य अकेडमी की भी आज एक बैठक थी और उसमें जो है उन लोगों ने कलबुर्गी की हत्या के साथ ही और इस तरह की जो हिंसा हो रही है उसकी निंदा की है, तो एक तरह से उनकी चुप्पी टूट गई है। साहित्यकार अब क्या चाहते हैं?
साहित्यकार दरअसल ये चाहते हैं कि लेखकों पर जो हमले बढ़ रहे हैं, उनकी एक जो प्रमुख मांग थी, जिसको लेकर उन्होंने साहित्य अकादमी के प्रमुख को ज्ञापन भी दिया, उसमें ये मांग की गई कि एक कानून इस तरह का बनाया जाना चाहिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को की रक्षा करता हो, जो लेखकों और साहित्यकारों पर हमले बढ़ रहे हैं, हिंसा की घटना बढ़ रही है, उन पर रोक लगाने के लिए किस तरह का कानून सरकार बनाए, और साहित्य अकादमी इस कानून को बनाने के लिए मांग उठाए। तो साहित्य अकादमी ने भी आज मीटिंग की, लेखकों पर जो हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की, और साथ में एक अपील भी की कि जिन लोगों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए हैं, वो सभी लोग अपने पुरस्कार वापस ले लें, और जिन लोगों ने इन घटनाओं के विरोध में साहित्य अकादमी से इस्तीफा दे दिया है, वो सभी लोग वापस अपना इस्तीफा ले लें और दोबारा कामकाज संभालें। साहित्य अकादमी ने यह भी कहा कि हम एक स्वायत्त संस्था हैं और हम जो भी फैसले करते हैं वो लेखक मिलजुल कर ही करते हैं।
मतलब इसके अलावा जी, एक और जो प्रदर्शन हुआ, जिसमें इस विरोध प्रदर्शन का विरोध किया गया था, वो कौन से लोग थे और वो क्या, उनकी क्या मांग थी?
उनकी ये मांग थी, उनका ये कहना था, वो एक तरीके से सरकार के पक्ष को सामने रखने के लिए लेखकों का ही वो एक समूह था। उनका ये कहना था कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन जो पुरस्कार लौटाने की परंपरा इस बार दिख रही है, वो परंपरा पहले नहीं दिखी। उनका ये कहना था कि ये जो साहित्यकार और लेखक इस समय पुरस्कार लौटा रहे हैं, वो पिछली इस तरह की हिंसा की घटना हो, या लेखकों पर हमले हुए हों, या समाज के ऊपर हमले हुए हों, तो वो उस समय क्यों छुप रहे? विरोध करने वालों का ये कहना था, ये तमाम सारे लेखक किसी खास गुट से जुड़े हुए हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन्होंने विरोध प्रदर्शन का ये परंपरा निकाली है।
बहुत शुक्रिया वत्सल्य इस पूरी जानकारी के लिए। और बीते कई दिनों से साहित्यकारों के इस विरोध का मसला मीडिया में छाया हुआ है। मैंने हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार असगर वजाहत से पूछा कि विरोध जताने का ये तरीका कितना उचित है।
देखिए, मैं ये मानता हूँ कि साहित्यकारों को अपना प्रतिरोध अपने तरीके से दर्ज कराने का पूरा अधिकार है, और उनके जो मुद्दे हैं वे मुद्दे बहुत सही हैं और उन मुद्दों से मैं सहमत हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये सोचता हूँ, जिस रूप में ये हो रहा है और जिस प्रकार से मीडिया में ये प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो कुछ ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने पुरस्कार लौटा दिए हैं वही सरकार के या उनके विरोधी हैं, और इसके अलावा बाकी लोग जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसा भाव जो जा रहा है, ये थोड़ा सा चिंता की बात है, क्योंकि लेखकों ने काफी लंबे समय से जिनको अवार्ड नहीं भी मिला है या जिन्होंने नहीं लौटाया है, वे सब जो है वो इन मुद्दों के ऊपर लेखकों के साथ आए। जैसे मान लीजिए कि सांप्रदायिकता का मुद्दा है, हिंसा का मुद्दा है, मानव अधिकारों भाषाओं का मुद्दा है, एक देश की बहुलतावाद को सुरक्षित रखने का मुद्दा है, इन सब मुद्दों के ऊपर एकजुट हैं। बहुत से लेखक ऐसे भी हैं कि जिन्होंने पुरस्कार नहीं लौटाया। तो अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति बना दी गई है कि जिन्होंने नहीं लौटाया वे शायद उतने सजग या उतने क्रांतिकारी या उतने एक्टिव नहीं है जितने वे हैं जिन्होंने लौटाया है। तो ये बात थोड़ी सी चिंता की है। और दूसरी चिंता की बात ये है कि ठीक है प्रतिरोध दर्ज कराया, लेकिन प्रतिरोध दर्ज कराने के बाद क्या होगा, क्या करेंगे? क्योंकि लेखक ये तय करेंगे या तो एक्टिवली भाग लेंगे समाज को सेंसिटाइज करने में और समाज को इन मुद्दों के लिए सचेत करने पर, अगर नहीं तो वो क्या करेंगे? इसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए जो शायद अभी तक नहीं है, हो सकता है कि आगे चलकर हों।
इसमें जो साहित्य अकादमी की भूमिका रही है, आज एक बैठक भी बुलाई गई थी और वहाँ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें कहा गया है कि लेखकों को अपना सम्मान वापस ले लेना चाहिए, तो साहित्य अकादमी की भूमिका को किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए साहित्य अकादमी से ये अपेक्षा करना वो इस जो मुद्दों में सक्रिय रूप से आगे आएगी ये शायद पहले कभी हुआ नहीं है। लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो पहले प्रधानमंत्री थे, बाद में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। साहित्य अकादमी ने कभी ऐसा किया नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर साहित्य अकादमी ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास किया है कि लेखकों को अवार्ड वापस ले लेना चाहिए तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई अपना प्रतिरोध दर्ज करवा रहा है तो उसको एक मान्यता देनी चाहिए।
क्या पहले कभी इस तरह की कोई घटना याद आती है आपको जब इस तरह से साहित्यकारों ने सम्मान लौटाया हो?
देखिए पुरस्कार लौटाने वाली बात तो मुझे ध्यान में नहीं आती है, लेकिन ये जरूर है कि साहित्यकारों ने पुण्य किया है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, साहित्यकारों की हत्याएं हुई हैं जिनके ऊपर विरोध प्रकट किया गया है, लेकिन वो विरोध प्रकट करने का तरीका दूसरा था।
एक तबका ऐसा भी सामने आ रहा है जो इस विरोध का विरोध कर रहा है। आज दो दो विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर निकले जिसमें एक तरफ तो साहित्यकार थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो इस विरोध का विरोध कर रहे थे। ये कैसी स्थिति है?
देखिए विरोध का विरोध करने वाले तो ये मानते ही नहीं है कि ये किसी का अधिकार हो सकता है कि वो सम्मान लौटा के अपना विरोध करे। वो कहते हैं कि ये लिख करके इनको करना चाहिए। तो मैं ये पूछता हूँ कि क्या ये हम तय करेंगे या आप तय करेंगे कि विरोध करने का तरीका क्या हो?
वरिष्ठ साहित्यकार असगर वजाहत बता रहे थे कि साहित्यकारों के विरोध का तरीका और उनका विरोध करने वालों का तरीका कितना उचित और अनुचित है।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिल्ली का नया नारा है कार फ्री डे। शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साइकिल चलाई। बीते महीने से गुड़गांव भी हर मंगलवार को मना रहा है कार फ्री डे। मकसद है लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर ले जाना। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है या एक दिन की कोशिश बन जाएगी आदत? कितना कम होगा प्रदूषण? इंडिया बोल में इस शनिवार इसी मुद्दे पर होगी बात। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब बात बिहार के चुनाव की। बिहार के चुनावों में क्या गरीबों और अमीरों के मुद्दे अलग अलग हैं? इसी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की गई है, खासतौर से बूझिए ना बिहार के में।
बूझिए ना बिहार को सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल।
बिहार में गरीबों के मुद्दे और अमीरों के मुद्दे अलग अलग हैं।
ऐसी आम धारणा है कि बिहार में गरीब और अमीर अलग अलग मुद्दों पर वोट देते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं जो गरीब मतदाता हैं उनको राजनीति की समझ नहीं है और वो पैसे लेके और आम तरह के जो लुभावने वादे होते हैं उसके आधार पे वोट डालते हैं, और अमीर जो मतदाता हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं वो बड़े सोच समझ के वोट डालते हैं।
आंकड़े क्या कहते हैं?
अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान 51% शिक्षित मतदाताओं ने सुशासन के नाम पे वोट दिया। अशिक्षित मतदाताओं गरीबों के बीच में भी देखें तो उनमें भी लगभग 50% मतदाताओं ने इसी मुद्दे पर वोट दिया। स्पष्ट है दोनों तरह के मतदाताओं के लिए मुद्दे अलग अलग नहीं थे। इसी तरह से अमीर और मध्यम वर्ग के मतदाताओं के बीच में भी देखें तो 54% मतदाताओं ने सुशासन के लिए वोट दिया और जो गरीब और निचले तबके के मतदाता हैं उनमें भी 50% मतदाताओं ने सुशासन के लिए वोट दिया। सुशासन 2010 के चुनाव में गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी वर्ग के मतदाताओं के बीच एक बड़ा मुद्दा उभर के आया था। और अलग अलग मुद्दों को अलग अलग चुनाव में भी देखें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुद्दे गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित मतदाताओं के लिए बिहार के चुनाव में अलग अलग नहीं रहे।
बूझिए ना बिहार को।
और अब विवेचना। साहिल लुधियानवी उन गिने चुने शायरों में थे जिन्होंने अदब की दुनिया में जितना नाम कमाया उतना ही फिल्मी दुनिया में भी। साहिल उन गीतकारों में थे जिनकी शायरी अपने असली रूपों में फिल्मों में पहुंची थी। फिल्मों में गाने लिखने के लिए उन्हें अपनी शायरी के स्तर से समझौता नहीं करना पड़ा। साहिल की 35वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओ में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी।
ये आवाज है भारतीय उपमहाद्वीप के जाने माने शायर साहिल लुधियानवी की। साहिर का शाब्दिक अर्थ है जादूगर। जब 16 साल की उम्र में अब्दुल हई ने अपना उपनाम साहिर चुना तो उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो वाकई शब्दों के जादूगर बन जाएंगे। साहिर की शख्सियत का शायद सबसे उम्दा चित्रण उनके समकालीन और दोस्त कैफी आजमी ने किया था।
5.5 फुट का कद जो किसी तरह सीधा किया जा सके तो 6 फुट का हो जाए। लंबी लंबी लचकीली टांगें, पतली सी कमर, चौड़ा सीना, चेहरे पर चेचक के दाग, सरकश नाक, खूबसूरत आंखें, आंखों से झीपा झीपा सा तफक्कुर, बड़े बड़े बाल, जिस्म पर कमीज, मुड़ी हुई पतलून और हाथ में सिगरेट का टिन।
साहिर को करीब से जानने वाले उनके एक और दोस्त प्रकाश पंडित उनकी झलक कुछ इस तरह से देते हैं।
साहिर अभी अभी सोकर उठा है। प्रायः 10-11 बजे से पहले वो कभी सोकर नहीं उठता और नियम अनुसार अपने लंबे कद की जलेबी बनाए, लंबे लंबे पीछे को पलटने वाले बाल बिखराए, बड़ी बड़ी आंखों से किसी बिंदु पर टिकटिकी बांधे बैठा है। इस समय अपनी इस समाधि में वो किसी तरह का विघ्न सहन नहीं कर सकता कि यकायक साहिर पर एक दौरा सा पड़ता है और वो चिल्लाता है, चाय। और सुबह की इस आवाज के बाद दिन भर और मौका मिले तो रात भर वो निरंतर बोले चला जाता है।
जब साहिर की गजल ताजमहल प्रकाशित हुई तो हर हासोआम की जुबां पर चढ़ गई। तारीफ के साथ साथ कुछ दक्षिणपंथी उर्दू अखबारों ने साहिर की यह कहकर आलोचना की कि उन जैसे एक नास्तिक शख्स ने बिला वजह शहंशाह शाहजहां की बेइज्जती की है।
ये चमनदार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुना कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।
दिलचस्प बात यह है कि इसे लिखने से पहले साहिर न तो कभी आगरा गए थे और न ही उन्होंने ताजमहल देखा था। साहिर पर किताब लिखने वाले अक्षय मनवानी कहते हैं,
जब उन्होंने ये नज्म लिखी थी तो काफी उनको इस पर लोगों ने उनके खिलाफ बहुत ही सख्त क्रिटिसिज्म किए थे कि इन्होंने ताजमहल को एक तरीके से इंसल्ट किया है और ये जो इतना खूबसूरत एम्बलम है इसका मजाक उड़ाया है। बट साहिर का ये, वो कहीं पर ताजमहल की खूबसूरती का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो उसकी जो सिम्बोलिज्म है उसके बारे में कह रहे हैं। और मजे की बात, वो वहां नहीं गए थे आगरा ताजमहल देखने के लिए, पर उन्होंने बड़ा ही ईमानदारी से इसका वो दिया बयां कि भाई मुझे अपनी भूगोल मालूम है और मालूम है कि वो जमुना के उस पर है।
साहिर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा अमर वर्मा सुनाते हैं जो साहिर के दोस्त भी थे और प्रकाशक भी।
मेरी उनकी जो पहली मुलाकात हुई 1957 में दिल्ली में हुई। मैंने एक सीरीज शुरू किया था 1 रुपए कीमत में, स्टार पॉकेट बुक सीरीज के नाम से। मैं चाहता था उसकी पहली किताब साहिर साहब की हो, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने कहा साहिर साहब, मैं छोटा सा पब्लिशर हूँ तो आपकी किताब मैं चाहता हूँ, مجھے دیجیے اجازت دیجیے. کہنے لگے اجازت لینے آیا میرے سے, میری ایک تلخیاں آئی ہوئی ہے اور آج سب نے چھاپ دیا ہے, آپ کو اجازت نہیں, کیا ضرورت ہے کہ وہ چھاپ سکتے ہیں تو کہ میں آپ کو منع کرتا. میں نے کہا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک تو نئی کوئی کتاب کلیکشن ہو. کہنے لگے اچھا پھر ایسی بات ہے تو میں ایک فلمی نغموں کا مجموعہ آج کل تیار کر رہا ہوں, آپ وہ چھاپ لینا. تو انہوں نے وہ گاتا جائے بنجارا کے نام سے اپنے فلمی کے جو کہ قریباً 60-70 یا 80 نغمے تھے ان کو دیا. تو وہ کتاب میں نے چھاپی, ان کو بھیجی. اور اس کے بعد جو میں بھول نہیں سکتا, میں نے ان کو ایک چیک بھیجا. اس وقت میں نے ان سے طے کیا تھا کہ 1000 کتاب چھاپیں گے, 6% رائلٹی دیں گے. تو اس کا رائلٹی 1000 کے ایڈیشن کی 62.50 روپے بنتے تھے. تو اتنی چھوٹی رقم تھی کہ ساحر کو کہنا کہ 62 روپے کا چیک لے لیجیے تو مجھے ڈر سا لگا. لیکن میں نے خط لکھا کہ میں ایک آپ کو حقیر سے رقم بھجوا رہا ہوں, یہ رقم تو مجھے منتا اتنی حقیر ہے کہ آپ کا بینک والے پوچھے گئے کہ اتنی چھوٹی رقم کہاں سے آ گئی. تو ان کا مجھے جواب آیا کہ یہ آپ اس کو معمولی رقم مانتے ہیں, آپ اس کے ویلیو کے اوپر جا رہے ہیں. زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے رائلٹی دی ہے کہ میں تو اس چیک کو کبھی بھول نہیں پاؤں گا.
اتنے بڑے شاعر ہونے کے باوجود ذرا سی بات پر اکتا جانا, گھبرا جانا یا شرما جانا ساحر کا سوبھاؤ تھا. اکشے منمانی کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں چھاتر نیتا رہے ساحر لدھیانوی بڑے جمگھٹ کو دیکھ کر کبھی اتساہت نہیں ہوتے تھے. مائکروفون کے نزدیک پہنچ کر ان کی زبان جیسے سل جاتی تھی. مشاعرے کے وقت بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کون سے کپڑے پہنے.
جو ان کی بہن نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ بھائی صاحب جب بھی جاتے تھے کسی مشاعرے میں تو یہ پہننا ہے یا وہ پہننا ہے, اسی میں زیادہ ان کا وقت چلا جاتا تھا. آخری منٹ تک تیار نہیں ہوتے تھے اور ہمیشہ لیٹ ہو جاتے تھے. تو یہ اگین وہ تھوڑا سا نا وہ کمپلیکسٹی ہے کیریکٹر میں کہ میں شادی کروں نہیں کروں, میں یہ شعر پڑھوں کہ وہ شعر پڑھوں. دوستوں کے ساتھ بھی گھرے رہنا ہے پر انہی دوستوں کے ساتھ. پھر کافی قصے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی یا فلاں شخص کے ساتھ بدسلوکی کی. تو وہ یہ سب ایک وچتر کیریکٹر کی اور اشارہ کرتے ہیں.
ممبئی کے ان کے شروع کے دنوں میں جب انہیں کوئی کام نہیں ملا تو ان کے دوست موہن سہگل نے انہیں بتایا کہ مشہور سنگیتکار ایس ڈی برمن ایک گیتکار کی تلاش میں ہے.
کسی نے انہیں بتایا کہ یہ بھائی ایک کمپوزر ہیں برمن صاحب کر کے, وہ کھار ایریا میں, ممبئی کے کھار ایریا میں گرین ہوٹل میں ہیں اور انہیں ایک نئے گیتکار کی ضرورت ہے. تو ساحر صاحب وہاں پہنچے تو انہوں نے, برمن دادا نے ان کو ٹیون دی اور انہوں نے فوراً لائن لکھ کے دے دی, وہ ٹھنڈی ہوائیں لہرا کے آئیں.
لتا منگیشکر کے گائے اس گیت نے برمن ساحر جوڑی کی نیو رکھی جو کئی سالوں تک چلی. گرو دت کی فلم پیاسا کے گیت اور سنگیت نے اس سمے پورے بھارت میں کھلبلی مچا دی. بھارتی فلم اتہاس کا سب سے کاویاتمک کھن آیا جب گرو دت نے ساحر کی یہ نظم گنگنائی.
یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا, یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا, یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا, یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے, یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے.
برمن اور ساحر دونوں کا ماننا تھا کہ پیاسا کی سفلتا کے حقدار وہ ہیں, لیکن ساحر کا زور شور سے یہ کہنا ایس ڈی برمن کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے ساحر کے ساتھ دوبارہ کام کرنے سے انکار کر دیا. ساحر کا نام کئی مہیلاؤں کے ساتھ جڑا لیکن انہوں نے تا عمر شادی نہیں کی. ان کی سب سے نزدیکی دوست تھیں امرتا پریتم. وہ اپنی آتم کتھا رسیدی ٹکٹ میں لکھتی ہیں.
وہ چپ چاپ میرے کمرے میں سگریٹ پیا کرتا, آدھی پینے کے بعد سگریٹ بجھا دیتا اور نئی سگریٹ سلگا لیتا. جب وہ جاتا تو کمرے میں اس کی پی سگریٹوں کی مہک بچی رہتی. میں ان سگریٹ کے بٹوں کو سنبھال کر رکھتی اور اکیلے میں ان بٹوں کو دوبارہ سلگاتی. जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं साहिर के हाथों को छू रही हूँ। इस तरह मुझे सिगरेट पीने की लत लगी।
पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा का नाम भी साहिर के साथ जोड़ा गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये साहिर का एक तरफा प्यार था।
जब मैं सुधा जी से मिला था, और एक तो सुधा जी ने मुझे दो तीन बातें कही जो मुझे ऐसे लगा कि वो सच कह रही हैं कि वन साइडेड ही था साहिर साहब की तरफ से। एक तो देखिए दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज्यादा था, ये भी रहा हो सकता है कि वो थी अच्छी, बहुत अच्छी गायक थी, उन्होंने काफी साहिर साहब के अच्छे गाने भी गाए जैसे सलाम हसरत कबूल कर लो। बट एक तरीके से ये भी था कि सुधा जी प्ले बैक उन्होंने बंद कर दिया था 60-61 के आसपास जब उनकी शादी हुई थी। मे बी एक तरीके से एक किसी यंग लड़की जो बहुत अच्छा गाना गाती है उनमें शायद उनकी कोई रुचि रही होगी, बट वो जो अमृता जी जैसे बयां करती है पूरे साहिर के साथ उनके ताल्लुकात, उसमें ज्यादा एक तरीके से पैशन निकल आता है, वो मुझे यहाँ नहीं दिखाई देता।
लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाता था कि साहिर का लिखा और महेंद्र कपूर का गाया ये गीत वास्तव में सुधा मल्होत्रा के लिए लिखा गया था।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से।
1960 में अपनी शादी के बाद सुधा मल्होत्रा ने हिंदी फिल्मों के लिए कोई गाना नहीं गाया, और न ही उसके बाद साहिर से उनकी कोई मुलाकात हुई। साहिर का लिखा और सुधा मल्होत्रा का गाया ये गीत उन दोनों के संबंधों को सही ढंग से रेखांकित करता है।
मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तुम मोहब्बत की है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है।
25 अक्टूबर 1980 को जब साहिर अपने दोस्त डॉक्टर आर के कपूर के यहाँ ताश खेल रहे थे कि उनको दिल का दौरा पड़ा। उनके दोस्त अमर वर्मा याद करते हैं।
1980 की बात है, 10 अक्टूबर को मुझे फोन आया उनका कि अमरनाथ साहब अब बम्बई कब आ रहे हैं। मैंने जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा, कहने नहीं नहीं आपसे बड़ी संजीदगी से कुछ डिस्कस करना है, एक तो मैं चाहता हूँ तलखियाँ का जो एक नया एडिशन खूबसूरत सा चलो जुबली छाप कर उसका एक तकरीब रखी जाए और बहुत बड़ा फंक्शन किया जाए, और दूसरी मेरी ख्वाहिश है कि मेरी कुछ नज़में हैं उनका अंग्रेजी तर्जमा भी हो। इसके लिए मैंने ख्वाजा नंबाज से बात की है। मैंने कहा साहब इतवाक से मैं आज यूरोप जा रहा हूँ, मैं 10-15 दिन में आ जाऊँगा, तो मैं आ जाऊँगा। 15 दिन बाद 25 अक्टूबर को सवेरे दिल्ली पहुँचा तो मेरी पत्नी ने कहा कि साहिर साहब का 2-3 बार फ़ोन आया है, आप ज़रा फ़ोन कर लीजिए। मैं थका हुआ था रात भर फ्लाइट में, मैंने कहा मैं कल बात करूँगा, इत्मीनान भी होगा और संडे भी। और रात को मुझे खबर आई कि उनकी डेथ हो गई है। मुझे इतनी तकलीफ हुई कि कम से कम मैं बात ही कर लेता।
तंगा चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम गमजदा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान फजल की ये विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। लेखकों के पुरस्कार लौटाने के सिलसिले के बाद साहित्य अकादमी ने आज एक विशेष बैठक बुलाकर डॉक्टर एमएम कलबुर्गी की हत्या की निंदा की है और लेखकों से अवार्ड वापस लेने की अपील की है। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में एक ट्रक और बस में हुई टक्कर की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक अखबार के मुताबिक बस में बुजुर्ग लोग सवार थे जो छुट्टियां मनाने जा रहे थे। चीन के सेंट्रल बैंक ने लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नए सिरे से मुख्य मुख्य ब्याज दरों में कटौती की है। सीरिया में युद्ध खत्म करने के लिए वियना में एक उच्च स्तरीय बैठक जारी है जिसमें अमरीका के विदेश मंत्री और रूस, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्री शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिन भर में आज इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।